केवल वोट दे देना लोकतंत्र नहीं, इसे बचाए रखने के लिए समझदारी से वोट करें। अगले महीने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। मतदाता एक बार फिर अपनी सरकार का चुनाव करेंगे। लोकतंत्र में चुनाव का बहुत महत्व है। यही एक मौका है जब जनता अपनी पसंद के उम्मीदवारों को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनती है। भारत में यह मौका हर 5 साल में एक ही बार आता है, इसलिए जनता से उम्मीद की जाती है कि वह अपनी पसंद के साथ अपनी जरूरतों को पूरा करने वाले प्रतिनिधि का ही चुनाव करें। लोकतंत्र का मूलभूत गुण असहमति, वोट के अधिकार का प्रयोग करते हुए ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो मुझे पसंद है वह किसी और को भी पसंद हो। इसलिए चुनाव में एक से ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। कोई भी जागरूक नागरिक यह जानता है कि लोकतंत्र में वोट की क्या कीमत है। वोट का अधिकार ही वह बुनियादी अधिकार है जो लोकतंत्र में हमारी हिस्सेदारी और हमारे नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि यह बुनियादी अधिकार भी महिलाओं को लंबी लड़ाई के बाद हासिल हुआ। सवाल उठता है कि लोकतंत्र की प्रक्रिया में राजा को रंक और सड़क पर चलते भिखारी को राजा बनाने की ताकत रखने वाला अधिकार जो इतना महत्वपूर्ण है, वह जनता को हासिल कैसे होगा। एक आम समझ है कि पूरी दुनिया में एक समान मानसिकता है कि जिसके पास अधिकार है वह उनको आसानी से नहीं छोड़ना चाहता, तो फिर उन्होंने अपने ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकने वाला यह औजार जनता को कैसे दे दिया। दुनिया के हजारों सालों के इतिहास में राजा 2 ही तरह से चुनते चले आ रहे हैं, पहला उत्तराधिकार के माध्यम से और दूसरा युद्ध के माध्यम से। इन दोनों ही माध्यमों में आम जनता को ही कहीं पर भी शामिल नहीं किया गया। तुलसीदास ने इसको रामचरितमानस में और बेहतर ढंग से समझाया है। वे कहते हैं कि कोई नरप होए हमें कहानी। उन्होंने जिस समय रामचरितमानस में इस चौपाई को लिखा था, वह देश और दुनिया में ऐसे ही राजाओं का दौर था। विचारकों के दिमाग में अभी तक लोकतंत्र या फिर जनता को अधिकार देने का विचार नहीं आया। आधुनिक लोकतंत्र के विचार की अवधारणा की शुरुआत ग्रेट ब्रिटेन से मानी जाती है, जिसने सबसे पहले अपने यहाँ जनता को वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया। ब्रिटेन से निकला एक विकल्प पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ और आज के समय में दुनिया के ज्यादातर देशों में लोकतांत्रिक प्रणाली है और वहां सरकार जनता के वोटों के माध्यम से चुनी जाती है। भारत के संदर्भ में देखें तो इसकी शुरुआत 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनने के बाद से ही हुई, जिसके बाद हुई वोटिंग में भारत के राजे महाराजों सहित तमाम रईस लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया गया। लेकिन यह सब अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई प्रणाली से हो रहा था। अंग्रेजों की बनाई यह व्यवस्था 1952 में हुए पहले चुनाव तक लागू रही। 1952 में हुए आजाद भारत के पहले चुनाव में देश के हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के यह अधिकार दिया गया। पहले चुनाव के समय मतदान करने के लिए जो प्रतिबंध लगाया गया था वह उम्र का था, जिसके तहत 21 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति वोट नहीं कर सकता था। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाने के बाद पहले ही चुनाव में महिलाओं सहित सबको वोटिंग का अधिकार दिया था। भारत के मामले में यह बात इसलिए भी और खास हो जाती है कि भारत को 1947 में ही अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी, जबकि दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका और खुद ब्रिटेन में वोट के अधिकार को हासिल करने के लिए महिलाओं को और विशेषकर अश्वेत लोगों को इसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। का अधिकार जितना महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका सही ढंग से प्रयोग किया जाना। लेकिन भारत के इतिहास में तमाम तरह से इसके दुरुपयोग के उदाहरण भरे पड़े हैं, जो बताते हैं कि अभी भी इसमें सुधार की गुंजाइश है। इसका दुरुपयोग करने वाले कारणों की पड़ताल करने पर पता चलता है कि इसमें सबसे ज्यादा योगदान उन राजनीतिक दलों का है जो इसका पालन करने वाली महत्वपूर्ण इकाई है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव वोटिंग के माध्यम से करती है, लेकिन जनता का प्रतिनिधित्व कौन करेगा यह राजनीतिक दल तय करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि संविधान द्वारा एक विधायिका और कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है। इसके लिए जरूरी है कि कार्यपालिका के गठन के लिए जनता के प्रतिनिधि और महिलाओं को, अश्वेतों को, खासा संघर्ष करना पड़ा। वोट का अधिकार जितना महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका सही ढंग से प्रयोग किया जाना। लेकिन भारत के इतिहास में तमाम तरह के ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जो बताते हैं कि अभी भी इसमें सुधार की गुंजाइश है। इसका दुरुपयोग करने वाले कारणों की पड़ताल करने पर पता चलता है कि इसमें सबसे ज्यादा योगदान उन्हीं राजनीतिक दलों का है जिन पर इसका पालन करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव वोटिंग के माध्यम से करती है, लेकिन जनता का प्रतिनिधित्व कौन करेगा यह राजनीतिक दल तय करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि संविधान के द्वारा एक विधायिका और कार्यपालिका का प्रावधान है। इसके लिए जरूरी है कि कार्यपालिका के गठन के लिए जनता के प्रतिनिधियों की निश्चित संख्या हो। यहीं से शुरुआत होती है वोटिंग के अधिकार के दुरुपयोग की, क्योंकि हर राजनीतिक दल चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा उसके प्रतिनिधि चुने जाएं, जिससे कि वह अपने अपने लोगों को एक साथ जुटाकर कार्यपालिका का गठन कर सके। इसके लिए वह शुरुआत से ऐसी प्रक्रिया का पालन करता है जिससे जनता के वोट देने के अधिकार को प्रभावित कर सके। ऐसा करते हुए वह जाति, धर्म, संप्रदाय, गुंडागर्दी करने वाले और इस सबसे ज्यादा पैसे वाले लोगों को अपना उम्मीदवार बनाता है। यहीं से शुरू होता है वोट को प्रभावित करने का खेल, जो लोकतंत्र के असली मकसद को खत्म कर रहा है। इन सब वजहों को मिलाकर आज आम आदमी के लिए किसी भी प्रकार के चुनाव में भाग लेना दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है, और लोकतंत्र अपने मकसद को खोकर महज कुछ अमीर लोगों के सत्ता में बने रहने की जुगाड़ बनकर रह गया है। ये वही लोग हैं जिनका देश के संसाधनों के बड़े हिस्सों पर कब्जा है, और वही लोग पूरे सिस्टम को अपने हिसाब से चला रहे हैं। आम जनता केवल 5 साल में एक बार वोट देने तक महदूद है, और इसी वोट देने को हम लोकतंत्र समझ बैठे हैं, जबकि लोकतंत्र का असली मकसद इससे कहीं ज्यादा है, जो सबको समान भागीदारी से लेकर समान हिस्सेदारी तक सुनिश्चित करता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली अपने सही मायनों में काम कर रही है? संविधान द्वारा जनता को दिए गए सभी अधिकार हासिल हैं? क्या वे स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले सकते हैं बिना किसी से प्रभावित हुए, या फिर वह महज 5 साल में एक बार वोट देने के लिए ही बनी है, जिसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सरकार उसके हक और अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रही है? इस मसले पर आप अपनी राय रिकॉर्ड करें ग्रामवाणी पर, अपने फोन से 3 नंबर का बटन दबाकर या फिर ऐप के माध्यम से। आप भले ही मुद्दे के पक्ष में हो या विपक्ष में, लेकिन आपका बोलना जरूरी है, क्योंकि बोलेंगे तो बदलेगा।